आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिमाल मशरिक तवानाई और सेमीकंडक्टर के शोबों में एक मरकज के तौर पर उभर रहा है। जर्मनी ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के अपने दिफा के हक की हिमायत की है। उसने भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी हल तलाश करने की सिफारिश की है। माओ नवाजों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आ गई है। महाराष्ट्र में 4 हलाक और छत्तीसगढ़ में 33 ने खुद सुपुर्दगी की है। अमरीका और ईरान ने रोम में 5वें दौर के न्यूक्लियाई मुजाकिरात किए। महकमा मौसमियात ने केरला के 6 जिलों में बारिश के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिमाल मशरिक तवानाई और सेमीकंडक्टरों जैसे शोबों के लिए एक अहम मकाम बनता जा रहा है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि शिमाल मशरिक रंगारंग भारत का एक इंतहाई मुतनव्वे खित्ता है और ये रंगारंगी मुल्क की कुव्वत है। नई दिल्ली में राइजिंग द नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि एक तरक्की याफ्ता भारत की तश्कील के लिए शिमाल मशरिक खित्ते की तरक्की बेहद जरूरी है।
आज देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने में भी नॉर्थ ईस्ट असम की भूमिका बड़ी हो रही है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सेमीकंडक्टर प्लांट से पहली मेड इन इंडिया चिप देश को मिलने वाली है। इस प्लांट ने नॉर्थ ईस्ट में सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए अन्य कटिंग एज टेक के लिए संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं।
वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक के लिए अंग्रेजी के लफ्ज़ ईस्ट के हर हर्फ के लिए एक लफ्ज़ देते हुए कहा कि ई का मतलब एम्पावर यानी बाइख्तियार बनाना, ए का मतलब एक्ट यानी अमल आवरी, एस का मतलब स्ट्रेंथन यानी मजबूती और टी से ट्रांसफॉर्म का मतलब काया पलट है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि एक वक्त वो था कि जब शिमाल मशरिक को सिर्फ एक सरहदी खित्ता कहा जाता था, पर अब ये तेजी से तरक्की करने वाले एक खित्ते के तौर पर उभर रहा है। जनाब मोदी ने सरमायाकारों से जोर देकर कहा कि वो शिमाल मशरिकी खित्ते में फैले तमाम सेक्टरों की तलाश करें। उन्होंने कहा कि शिमाल मशरिक मवाके की एक सरजमीन बन रहा है।
नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत बेचैनी फैलाने वाली हर चीज, ख्वाह वो दहशतगर्दी हो या माओ नवाज अनासिर, उसे कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर अमल करती है।
किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है, इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर दिया। पिछले 10-11 साल में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता चुना है।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में शिमाल मशरिकी रियासतों में वाके कई कंपनियों ने अपने मसनूआत और खिदमात की नुमाइश की। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए कंपनी के नुमाइंदों ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से उनकी रियासत में सरमायाकारी के इम्कानात में इजाफा होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के 26 एहलकारों को बहादुरी के लिए पुलिस तमगों से नवाजा। जनाब शाह बीएसएफ की इन्वेस्टिट्यूचर सेरेमनी और रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब था और आज पूरी दुनिया भारतीय मुसल्ला अफवाज की बहादुरी की सताइश कर रही है।
आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है और मैं आज इस मंच पर से सेना के उन वीर जवानों को, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो पराक्रम किया है, वो सभी को समग्र राष्ट्र की ओर से मैं उनको अभिनंदन भी करना चाहता हूं और धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि आपने देश के स्पिरिट को वहां तक पहुंचाने का काम किया है जहां पहुंचाने की जरूरत थी।
बीजेपी ने आज ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के तबसरे के लिए उनकी नुक्ताचीनी की है। पार्टी ने जनाब राहुल गांधी की जानिब से वजीर आजम से सवाल करते हुए उनके जरिए इस्तेमाल किए गए अल्फाज पर एतराज का इजहार किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के सीनियर लीडर ने भारत के दहशतगर्दी मुखालिफ कामयाब ऑपरेशन पर गैर जिम्मेदाराना तबसरा किया है, वो भी ऐसे वक्त में जब मुल्क के 140 करोड़ आवाम जनाब मोदी की क़यादत के हामी हैं और पूरी दुनिया उनकी सताइश कर रही है। जर्मनी ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के अपने दिफा के हक के मुकम्मल हिमायत की है। उमूर खारजा के वजीर डॉक्टर एस जयशंकर ने आज बर्लिन में जर्मनी के अपने हम मनसब जॉन वेटफुल से मुलाकात की। बातचीत के बाद जर्मनी के वजीर ने भारत पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। जनाब वेटफुल ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी हल की वकालत की। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तरीकेकार पर तबादला ख्याल किया और इम्कानी मौके के मुख्तलिफ शोबों की निशानदेही की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया अब कम मगरबी और ज्यादा मुतनवे, ज्यादा आलमगीर और ज्यादा से ज्यादा एशियाई भी हो रही है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में एक खबर रसा एजेंसी के साथ इंटरव्यू में वजीर मौसूफ ने कहा कि नए आलमी निजाम के खाके ने शक्ल सूरत इख्तियार करनी शुरू कर दी है। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया बतदरीज एक नए तवाजुन को कायम करते हुए देख रही है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि 2008 का आलमी इक्तसादी बहरान एक बड़ी तब्दीली लाने वाला बहरान था, क्योंकि उसने ये दिखा दिया कि मगरबी ममालिक इसको अकेले ही हल नहीं कर सकते। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मामले पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने मजबूती के साथ कहा कि ये एक दहशतगर्दाना हमला था और ये कश्मीर के मामले पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान का कोई तनाज़े नहीं था। उन्होंने मजीद वजाहत की कि दहशतगर्दी, आबो हवा की तब्दीली और बढ़ती हुई गरीबी के साथ साथ आलमी चैलेंजों में से एक बड़ा चैलेंज है। डॉक्टर जयशंकर ने मजीद कहा कि 1947 में आज़ादी के बाद से कश्मीर में पाकिस्तान की जानिब से भारत की सरहदों की खिलाफ वर्जी हुई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दुनिया के सामने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का मौकिफ रखने के मकसद से बनाए गए कसीर पार्टी वफूद ने आज मुत्तहिदा अरब अमारात, जापान और रूस का दौरा किया। जेडीयू के मेंबर पार्लियामेंट संजय झा की कयादत में जापान के लिए भारत के कुल पार्टी वफद ने टोक्यो में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के इनजादे दहशतगर्दी से मुतालिक तहकीकी कमेटी के कारगुजार सदर नशी और महकमा इंसाफ के साबिक वजीर यासो हिरो हानाशी से मुलाकात की। टोक्यो में मीडिया से बात करते हुए जनाब झा ने कहा कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई का जवाब मजबूत और मुसम्मम फौजी कार्रवाई से दिया जाएगा। शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की कयादत वाले आला सतह के एक और वफद ने मुत्तहिदा अरब अमारात की कयादत और मीडिया अहलकारों के साथ आला सतह की कई मीटिंगें की ताकि दहशतगर्दी के सिलसिले में भारत के कतई बर्दाश्त न करने के मौकिफ को उजागर कर सकें। डीएमके की मेंबर पार्लियामेंट कन्नी मोई करुणानिधि की कयादत वाले एक और कुल पार्टी वफद ने आज रूस में बैन अल-अक़वामी उमूर की कमेटी के अव्वल नायब सदर नशीं एंड्रे डेनिसोव से मुलाकात की। रूस की तरफ से पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई और कहा गया कि रूस दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के अमल में भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ ब्लॉक के जंगलात में छत्तीसगढ़ की सरहदी سرحد کے نزدیک آج صبح سیکیورٹی فورسز کی ایک مشترکہ کارروائی میں 4 ماؤ نواز ہلاک ہوئے۔ جنگلاتی علاقے میں تیز بارش کے دوران کی گئی اس کارروائی کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے گڑچرولی کے ایس پی نلوت پال نے بتایا کہ مرنے والے 4 ماؤ نوازوں میں سے ایک ڈویژنل کمانڈر رینک کا ماؤ نواز تھا، جبکہ دیگر سینئر کیڈر کے تھے۔ جائے وقوع سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور دیگر ساز و سامان برامد کیا گیا ہے۔ ایس پی موصوف نے بتایا کہ ان 4 ماؤ نوازوں کے لیے مجموعی طور پر 14 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان تھا اور یہ اپنے مرتکب کردہ مختلف جرائم میں مطلوب تھے۔ چھتیس گڑھ کے 2 مختلف ضلعوں میں آج کل 33 ماؤ نوازوں نے خود سپردگی کی ہے، ان پر 90 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ 24 ماؤ نوازوں نے ریاست کے بیجاپور ضلع میں خود سپردگی کی۔ ڈی ایس پی جتیندر کمار یادو نے بتایا کہ خود سپردگی کرنے والے یہ تمام ماؤ نواز گولی چلانے، بارودی سرنگ بچھانے جیسے واقعات میں ملوث ہونے کے ملزم تھے۔
آج 24 ہارڈ کور ماؤوادیوں کا سرنڈر ہو رہا ہے، جس میں پرمکھتا سے جو کمپنی نمبر 2 ہے اس کے ڈپٹی کمانڈر راکیش، اس کا سرنڈر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ مارٹ ڈویژن میں کمپنی نمبر 7 ہے، اس کے جو پی پی سی ایم ہے، پی ایل جے بٹالین کے 2 سدسیہ ہیں، اور اسی پرکار کمپنی نمبر 2 کے ایک سدسیہ، کل ملا کر 87.5 لاکھ کے انعامی نکسلی آج سرنڈر کر رہے ہیں۔
ادھر دانتے واڑا ضلع میں بھی 9 ماؤ نوازوں نے آج پولیس کے سامنے خود سپردگی کی، ان میں سے 4 ماؤ نوازوں پر 3.5 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ خود سپردگی کرنے والے تمام ماؤ نوازوں کو ریاستی حکومت کی باز آباد کاری پالیسی کے تحت 50,000 روپے بطور سہولت مہیا کرائے گئے۔ عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے رمن اروڑا کو آج جلندھر میں پنجاب ویجیلنس بیورو نے گرفتار کر لیا ہے۔ ریاست کے ویجیلنس بیورو کے افسران نے آج صبح جلندھر میں ان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا۔ رائے دہندگان کو سہولتیں پہنچانے پر مرکوز اقدامات کے تحت انتخابی کمیشن نے پولنگ مراکز کے باہر موبائل فونز جمع کرانے کی سہولت متعارف کرائی ہے۔ انتخابی کمیشن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پولنگ مراکز کے اطراف 100 میٹر کی حدود میں موبائل فون صرف سوئچ آف حالت میں ہی رکھنے کی اجازت ہوگی۔ کمیشن نے مزید کہا کہ پولنگ مراکز کے داخلی دروازوں پر رائے دہندگان کے موبائل فونز جمع کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے خانوں پر مشتمل ڈبے یا پرسن کے تھیلے رکھے جائیں گے، تاہم ناموافق مقامی حالات کی وجہ سے ریٹرننگ افسر کچھ پولنگ مراکز پر اس سہولت کو رد کر سکتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیائی مذاکرات کا 5واں دور اٹلی کے شہر روم میں شروع ہو گیا ہے۔ ان مذاکرات میں ایران کے نیوکلیائی پروگرام کو محدود کیے جانے کی بات کی جائے گی، جس کے بدلے میں ایران پر امریکہ کی جانب سے عائد بعض اقتصادی پابندیاں ہٹا لی جائیں گی۔ ایران کے یورینیم کو افزودہ کرنے کے پروگرام پر عمان کے شہر مسقط میں ہوئے پچھلے دور کے مذاکرات کے دوران ایک عام نا اتفاقی کے بعد یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے بین الاقوامی طالب علموں کو داخلہ دینے کی اہلیت ختم کیے جانے کے بعد یونیورسٹی ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کے مطابق یہ اقدام قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بوسٹن میں آج دائر کیے گئے مقدمے کا مقصد اندرونی سلامتی سے متعلق محکمے کے اس فیصلے پر پابندی کا مطالبہ کرنا ہے، جس کی روح سے ہارورڈ کے اسٹوڈنٹس اور ایکسچینج وزٹر پروگرام کے تحت سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے اسے محروم کرنا ہے۔ کیرلا میں شمال مغربی مانسون کے مزید شدت اختیار کرنے کے سبب محکمہ موسمیات نے ریاست کے 6 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جس کی وجہ سے مختلف جگہوں پر تیز اور بہت تیز بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اتوار کو 5 اور پیر کو 7 اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ بھی جاری کیا ہے، کیونکہ پوری ریاست میں مانسون کے مزید شدت اختیار کرنے کا امکان ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے سرکردہ کھلاڑی کدامبی سری کانت کوالالمپور میں جاری ملیشیا ماسٹرز کے مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ سری کانت نے سنسنی خیز کوارٹر فائنل میں آج دوپہر فرانس کے تامن جونیئر پپوف کو شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ شمال مشرق توانائی اور سیمی کنڈکٹر کے شعبوں میں ایک مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ جرمنی نے دہشت گردی کے خلاف بھارت کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کی ہے۔ اس نے بھارت اور پاکستان کے درمیان باہمی حل تلاش کرنے کی سفارش کی ہے۔ ماؤ نوازوں کے خلاف کارروائی میں تیزی آ گئی ہے۔ مہاراشٹر میں 4 ہلاک اور 36 گڑھ میں 33 نے خود سپردگی کی۔ अमरीका और ईरान ने रोम में पांचवें दौर के न्यूक्लियाई मुजाकिरात किए। महकमा मौसमियात ने केरला के 6 जिलों में बारिश के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।